नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्र से तिलवाड़ा गुप्तकाशी मोटरमार्ग को 2 लेन में विकसित करने का आग्रह किया। उधम सिंह नगर में 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू होगी। किसानों से भारत ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराने की अपील। प्रदेश में 26 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना। उधम सिंह नगर के स्कूलों में आज अवकाश। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर टिहरी में 28 और 29 अगस्त को जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क रहित आयात को इजाजत दे दी है। महानिदेशक विदेश व्यापार ने कल जारी एक सूचना में कहा कि कुछ शर्तों के साथ 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का शुल्क के बगैर आयात किया जा सकेगा। यह फैसला त्योहारों के मौसम से पहले लिया गया है, जब आम तौर पर चीनी की मांग बढ़ जाती है। घरेलू बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता के बाद यह निर्णय लिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। प्रमुख नदियों में वैज्ञानिक तरीके से ड्रेनेजिंग और बाढ़ सुरक्षा उपायों के लिए नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यास, रावी, भागीरथी, अलकनंदा और तिस्ता सहित प्रमुख नदियों के लिए संयुक्त कार्य योजना पर चर्चा हुई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। श्री महाराज ने कहा कि उत्तरकाशी से गंगोत्री के बीच करीब 100 किलोमीटर का क्षेत्र पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील है। इसके लिए उन्होंने नदी के किनारे स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग की ऊंचाई बढ़ाने का सुझाव दिया। साथ ही हर्षिल के निकट कृत्रिम झील से राष्ट्रीय राजमार्ग 34 की सुरक्षा के लिए करीब 600 मीटर क्षेत्र में सड़क को 1 से 1.5 मीटर तक ऊंचा उठाने की आवश्यकता बताई। बैठक में श्री महाराज ने रेल परियोजनाओं में बनने वाले निकासी सुरंगों को कम से कम 2 लेन के मोटर वाहन यातायात के लिए उपयोगी बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने तिलवाड़ा मायली गुप्तकाशी मोटर मार्ग को भी 2 लेन में विकसित करने का अनुरोध किया। सर्वोच्च न्यायालय ने विद्यार्थियों के लिए CBSE की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्यपुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, विद्यार्थियों पर बोझ और स्कूलों में कुछ नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश न्यायमूर्ति जयमौल बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए CBSE की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने जिले में धान खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिले में आगामी 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू होगी। इसके लिए जुलाई माह से अब तक भारत ऐप के माध्यम से 1,863 किसान अपना पंजीकरण करा चुके हैं। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने किसानों से समय रहते पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर धान खरीद के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए विकास खंड स्तर पर उड़न दस्तों का गठन किया जाएगा।
यहाँ पर मौजूद थी, जिनके द्वारा पूरा अपना आज मांग पत्र है उसको रखा गया और कई चीजों पे स्पष्टीकरण भी हम लोगों के द्वारा दिया गया। तो सर्वप्रथम किसान बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि वो उस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में का भाग बने और अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं। सेकेंडली, हमारी जो उनकी जो समस्याएं थी उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उन समस्याओं के निराकरण हेतु फ्लाइंग स्क्वाड्स को बनाए। फ्लाइंग स्क्वाड्स हम लोगों ने इस बार हर विकास खंड के लिए हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड बनाएंगे ताकि समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। इसके अलावा जो हमारे धान क्रय केंद्र होंगे उनके निरीक्षण के लिए भी निर्देशित किया गया है और उसमें किसान बंधु उस निरीक्षण में स्वयं भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो प्रशासन तुरंत एक्शन लेगा।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। अल्मोड़ा जिले में मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी अंशुल सिंह की अध्यक्षता में स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहे लोगों के अनुभवों और व्यवहारिक सुझावों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बड़ी चुनौती है। इसके समाधान के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी उपायों को पायलट परियोजना के रूप में लागू करने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि पायलट परियोजना के सफल उपायों को अन्य प्रभावित क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है।
हमारे द्वारा स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया गया, जिसमें जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता वो आए, और कई एक दो लोग हमारे ऐसे थे जो काफी समय से इधर काम कर रहे हैं। इवन वन पर्सन जो हमारे थे 93 इयर्स ओल्ड थे, उन्होंने काफी टाइम कीवी पे काम करा है और ऐसे फ्रूट्स पे काम करा है जिनको बंदर या फिर जंगली सुअर नहीं खाता है। तो एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुआ, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि क्या प्लांटेशन होनी चाहिए, क्या हमारी फॉरेस्ट की टीम की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी सोलर लाइट्स लगानी चाहिए, या कैसे हमें अपनी पॉलिसी में भी चेंजेस करने चाहिए ताकि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सके, लोगों को जानवरों के प्रति जागरूक कर सके।
बागेश्वर की जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने पिंडर घाटी के दुर्गम क्षेत्रों का दौरा कर सड़क यातायात और आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त मार्गों को सुरक्षित और सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय लोगों से विद्युत, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी भी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि पिंडर घाटी में स्थानीय संसाधनों और पर्यटन की संभावनाओं का बेहतर उपयोग कर रोजगार के नए अवसर विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आगामी 26 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। अगले 3 दिनों तक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। आज उधमसिंह नगर, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आमजन से गाढ़ गदेरों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सतर्कता बरतने की अपील की है। साथ ही अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से लगभग 107 सड़कें अवरुद्ध हैं। इस बीच उधमसिंह नगर जिले में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में आज एक दिन का अवकाश घोषित किया गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर टिहरी जिले में 28 और 29 अगस्त को विभिन्न खेलों की जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बोराड स्टेडियम में ओपन बालक वर्ग की गोला फेंक प्रतियोगिता होगी। वहीं मुनिकीरती के श्री पूर्णानंद स्टेडियम में जूनियर बालक वर्ग की हॉकी और ओपन बालक वर्ग की हैंडबॉल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। जिला खेल कार्यालय ने खिलाड़ियों से अधिक संख्या में प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने की अपील की है। प्रतियोगिताओं में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को खेल विभाग की ओर से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और अब एक नज़र आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। कांग्रेस के वंदे मातरम गायन विवाद पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया को आज सभी समाचार पत्रों ने पहले पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। इस खबर पर हिंदुस्तान सीएम धामी के हवाले से लिखता है, वंदे मातरम पर कांग्रेस की देश विरोधी सोच फिर बेनकाब। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के मसूरी में आईएएस प्रशिक्षुओं से संवाद दौरे पर अमर उजाला का शीर्षक है, सेवा भाव और कर्तव्य बोध को बनाए मार्गदर्शक मंत्र। राजधानी देहरादून में भारत नेपाल ग्रुप मीटिंग पर अमर उजाला की सुर्खी है, भारत नेपाल की सीमा पर रुकेंगे अपराध, चलेगा संयुक्त अभियान। दिल्ली की मास्टर प्लान पर नवोदय टाइम्स लिखता है, दिल्ली होगी अब और ऊंची, मास्टर प्लान 2047 पर लगी मुहर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्र से तिलवाड़ा गुप्तकाशी मोटर मार्ग को 2 लेन में विकसित करने का आग्रह किया। उधमसिंह नगर में 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू होगी। किसानों से भारत ऐप के माध्यम से पंजीकरण कराने की अपील। प्रदेश में 26 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना। उधमसिंह नगर के स्कूलों में आज अवकाश। और राष्ट्रीय खेल दिवस पर टिहरी में 28 और 29 अगस्त को जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।